المفهوم. يعني تلاتي بعد يوم 1967 दूसरे टेस्ट से अंतिम लाइन में बात चल रही थी बच्चों ने बुलाया है और बच्चों के लिए ही आए और बच्चों को ही कहते हैं तुमने बुलाया है और मैं आया हूं बच्चे ही बुलाते हैं जो बुलाते हैं ये पतित पावन सीताराम आओ कोई पति से पावन बनते हैं जो बुलाते नहीं है वो पति से पावन बनते भी नहीं है और पतित पावन भी बाप को ही कहते हैं गंगा यमुना आदि के पानी से कोई तुम पावन नहीं बन सकते आधा कल्प तुम भूल में चले हो पांच छह अवसर की वाणी का की सभी भगवान को ढूंढते हैं परंतु किसको भी समझ में नहीं आता है कि भगवान कौन है और कहां है अभी बाप कहते हैं बच्चों अभी तुमको उल्लास से निकलना चाहिए परंतु इतना उल्लास से निकलते नहीं है इनको देह अभिमान कहा जाता है कि देही अभिमानी अभी तो तुम बाप के सन्मुख बैठे हो वेद के बाप को याद करने से वेद की बादशाही जरूर याद आवेगी तो ऐसे बाप को कितना प्यार से रिस्पॉन्ड करना चाहिए बाप तुम्हारे बुलाने से आया है परंतु आया तो ड्रामा अनुसार है 63 जन्म जब तुम बुलाते रहे तब तो नहीं आया अचानक ही आया है परंतु एक मिनट भी आगे पीछे नहीं हो सकता है सभी कहते हैं ना ओ फादर ओ गॉड फादर रहम करो लिबरेट करो हम सभी अभी रावण की जंजीरों में हैं आप आकर के हमारे गाइड बनो तो बाप गाइड भी बनते हैं और सभी उन बाप को बुलाते भी हैं कि हो लिबरेटर हो गाइड आकर के हमारा गाइड बनो हमको भी साथ ले चलो अभी तुम तो संगम पर खड़े हो और बाप सतयुग की स्थापना कर रहे हैं ये तो कलयुग है इस कलयुग में 500-700 करोड़ मनुष्य हैं सतयुग में तो सिर्फ देवी देवताएं ही होते तो जरूर कलयुग के अंत में विनाश होता होगा और वो विनाश भी अभी सामने खड़ा है आज से 70 साल पहले न एटम बम्बों का नाम निशान था और न भगवान आया था अभी 70 साल के अंदर भगवान भी आया हुआ है और एटमिक एनर्जी का भी बोलबाला होता जा रहा है इसके लिए शास्त्रों में जाहिर है कि साइंस घमंडी कितनी अकल से कितनी बुद्धि से घमंड की बातें निकालते रहते हैं शास्त्रों में तो लिख दिया पेट में से मुंह से निकले। अब स्थूल पेट में से कोई लोहे के मुंह से निकलते हैं क्या? ये तो बुद्धिरूपी पेट की बात है जिसमें से मिसाइल से निकले हैं। कहते हैं एक दुनिया तो क्या चार पांच दुनिया भी इकट्ठी हो जाए तो भी हम यहां बैठे बैठे खत्म कर देंगे। अभी बाप कहते हैं ये सब है यादव संप्रदाय, यादव कौरव और पांडव, कौरवों की और यादवों की बहुत आए थे, पांडव तो पांच होते हैं उंगलियों पर गिने योग्य। पहले भी ये महावारी महाभारत युद्ध हुआ था, फिर चतुर्थ विश्व युद्ध भी हुआ था, अभी फिर हिस्ट्री मास्टरपीट, अभी तो सत्युग की हिस्ट्री रिपीट होनी है। तुम समझते हो हम नई दुनिया में ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं? जो पुरुषार्थ कर रहे हैं तो उनको पवित्र तो जरूर बनना है। तुम समझाते हो आठ नौ वर्ष में विनाश होना है, कौन से सन की वाणी है? 68 की। 68 में 9 साल किस लिए बोला? 68 और 9 साल 76, 76 में विनाश तो हुआ नहीं। अरे चाहे विनाश हो चाहे स्थापना हो, शुरुआत तो एक से होगी कि अनेक से होगी? बुद्धि में पहले एक की बात बुद्धि में बैठेगी, फिर नंबर बार बुद्धि में आएगा। कोई भी काम पहले संकल्पों में आता है, फिर वाचन में आता है, फिर कर्मेंद्रियों से प्रैक्टिकल होता है। तो शुरुआत की बात बताई कि 76 में कोई एक आत्मा है जिसकी बुद्धि में बात बैठ जाती है, अब ये सारी दुनिया मरी पड़ी है, आप मुए मर गई दुनिया। समझ लेते हैं कि अब बच्चे आदि तो कोई के जीते नहीं रहेंगे, ना कोई अब वारिस बन पाएगा, शादियां आदि करने का भी कोई फायदा नहीं। अभी तो बहुत गई, बाकी थोड़ी रही, थोड़ा सा समय है और उस थोड़े समय का भी हिसाब है। क्या हिसाब है? जो भी धर्म पिताएं आए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि, उन्होंने आकर अपने धर्म की स्थापना की। मानवीय जीवन के 100 वर्षों के अंदर ही उन्होंने स्थापना की, इससे ज्यादा टाइम तो कोई ने भी नहीं लिया। भगवान बाप भी आते हैं, 100 वर्ष के अंदर पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करके जाते हैं। इसको कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग, कलयुग का अंत और सत्युग की आदि। तो थोड़ा समय है, तैतीस साल व्यतीत हो गए 68 में, तो कितना बचा? 66-67 साल बचते हैं। इस टाइम में स्थापना का काम भी पूरा होगा और एटमिक विनाश का अंतिम कार्य भी पूरा हो जाएगा। आगे तो ऐसे नहीं कहते थे, अभी तो साफ बतलाते हैं टाइम बहुत थोड़ा है। पहले वाले जो मरे हुए हैं उन्होंने वहां जन्म नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ले लिया है। कहां ले लिया है? ब्राह्मण जीवन में जो भी पुरुषार्थ किया जाता है, पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ करते करते अगर शरीर छोड़ते भी है तो उनका पुरुषार्थ का संचय अगले जन्म में जाता है, फिर तीखे ब्राह्मण बनकर के जन्म लेते हैं। ऐसे बहुत हैं जो यहां आते भी होंगे। उनके पांव लालने में ही मालूम पड़ जाते हैं, पालने के अनुसार दिखाई पड़ता है, जैसे कि यहां का बिछुड़ा हुआ है। ऐसों को ज्ञान के बगैर मजा ही नहीं आएगा। माँ बाप को भी कहते हैं हम यहां जावेंगे, यहां तो बहुत सहज समझने की बातें बताई जाती हैं और विनाश का भी उनकी बुद्धि में पक्का होगा, विनाश जरूर होना है। अभी तुम लड़ाई की तैयारियां भी देख रहे हो, सब देशों में अंदर ही अंदर आग सुलगती जाती है। कितने देशों का आधा खर्चा तो इस लड़ाई के सामान को इकट्ठा करने में चला जाता है। कैसे कैसे लड़ाई के लिए एरोप्लेन आदि बनाते हैं, शास्त्रों में लिख दिया है कि ये भगवान की दाढ़ें हैं। सारी दुनिया भगवान की इन दाढ़ों के बीच में चबाई जाने वाली। कौन सी दाढ़ें? ये एटम बम मिसाइल्स आसमान में भी तैर रहे हैं, सागर के अंदर भी पड़े हुए हैं, जमीन के अंदर भी दाबे हुए हैं। तो भगवान की दाढ़ें हुई ना, ये सब एरोप्लेन काम में आ रही है। विनाश की काम में आ रही है और तो कोई खास काम नहीं है। कोशिश करके उनको भी इम्प्रूव करते जाते हैं। कहते हैं घर बैठे सभी कुछ खलास कर देंगे। ऐसी ऐसी चीजें बनाते रहते हैं, आगे चल करके ऐसा भी समय आएगा हॉस्पिटल आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। ड्रामा में ये सब जैसे बाप के इशारे दिखते रहते और वो भी ड्रामा में नूद है। समझते हैं ऐसा न हो जो बीमार कोई पड़ जावे, मरना तो सभी को है। कहते भी है राम गयो रावण गयो जिनको बहु परिवार, बचेगा तो कोई भी नहीं। जो योग में रह करके आयु बढ़ाते होंगे उनकी तो आयु जरूर बढ़ेगी। तुम कहेंगे फलानी फलाना तो बहुत योगी था, वो क्यों गया? बाबा कहेंगे ये तो योग की गुप्त ताकत है, कोई का पता थोड़ी चलता है कौन कितना योगी है। योग की ताकत नहीं थी इसलिए उसकी आयु नहीं बढ़ी। योग बल हो तो आयु भी बढ़ती रहेगी। योग बल वालों की अकाल मृत्यु क्यों होनी चाहिए? इसका मतलब ब्रह्मा बाबा की अकाल मृत्यु हुई, हार्ट में अचानक दर्द हुआ, डॉक्टर के आने तक शरीर छोड़ दिया, तो क्या ब्रह्मा बाबा योगी नहीं थे? थे या नहीं थे?
योग बल
एक तो बोला योग बल वालों का हार्ट फेल नहीं हो सकता, उनका हार्ट मजबूत होता है, योग बल से ही मजबूत होता जाता है। योग बल कहा जाता है आत्मा का परमपिता परमात्मा से योग। आत्मा तो प्रैक्टिकल साकार में सृष्टि पर है, फिर योग किससे लगा लेंगे? परमपिता परमात्मा से, तो वो भी प्रैक्टिकल में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ब्रह्मा बाबा किससे योग लगाते थे? दिल्ली से? एक निराकार एक साकार साथी साबित होंगे। भगवान तो इस दुनिया में आकर साथी बनता है, सर्व संबंधों से संबंध निभाता है, फिर योग कहां साबित हुआ? क्या ब्रह्मा ने बाप को पहचाना? नहीं पहचाना, इसका क्या प्रूफ है? कोई प्रूफ तो होना चाहिए। प्रूफ है विद्यालय का नाम क्या रखा? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। फिर बाप ने उसको क्या करेक्शन किया? शिव बाप ने करेक्शन किया, ये गलती है जो तुमने नाम रखवा लिया है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। इससे क्या साबित होता है? गीता का भगवान कौन साबित हो गया? ब्रह्मा और कृष्ण की आत्मा ही गीता का भगवान साबित हो गया साकार में। क्या ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला ब्रह्मा था? ब्रह्मा के अंदर तो बाद में प्रवेश करके मुरलियां चलाई, पहले तो यज्ञ में पीयू की वाणी प्रसिद्ध थी। तो साबित होता है कि ब्रह्मा ने स्वयं ही बाप को नहीं पहचाना, तो योगी होने का सवाल ही नहीं। योगी जीवन में यही सिद्धि को प्राप्त होगा या मृत्यु पाने के बाद सिद्धि को प्राप्त होगा? यही सिद्धि होनी चाहिए। तो बाप कहते हैं योग बल वाले जो भी हैं वो अपनी आय को बढ़ाते रहेंगे और अपनी खुशी से शरीर छोड़ेंगे, बीमारी से जबरियन उनका शरीर छूट जाए, ऐसे नहीं हो सकता। अकाले मौत में उनका शरीर छूट जाए, ऐसे नहीं हो सकता। मृत्यु उनकी मुट्ठी में होगी। जैसे बाबा मिसाल बताते हैं, जो ब्रह्मज्ञानी अपन को कहते हैं वो भी ब्रह्म में जाने के लिए ऐसे ही खुशी से शरीर छोड़ देते, परंतु वास्तव में ब्रह्म में कोई जाति तो नहीं, नील में चले जाते हैं। रिजल्ट क्या होता है? फिर जन्म लेना पड़ता है, न उनके पाप कटते हैं, पुनर्जन्म तो फिर भी यहां ही लेते रहते हैं ना। तो पाप कटने की युक्ति बाप ही बतलाते हैं। क्या है? ऐसे कोई याद करो जिसके ऊपर कब कोई पाप चढ़ता ही नहीं, वो तो पाप कटेश्वर है, पापों को काटने वाला है, उसके ऊपर तो पाप चढ़ने का सवाल ही नहीं, वो पाप और पुण्य दोनों से परे है। तो बाप युक्ति बतलाते हैं, पाप काटने के लिए माँ में एकम याद करो और कोई दूसरे को याद न करो, लक्ष्मी नारायण को भी याद नहीं करना, वो भी दो हो गए, इसको याद करना है। सबसे अच्छी याद है नारायण को याद करो। अगर लक्ष्मी को भी याद किया तो कैसी याद हो जाएगी, बेविचारी याद हो जाएगी। तुम जानते हो इस पुरुषार्थ से ही हम यह पद पाते। कौन से पुरुषार्थ से? एक बाप की ही अभिविचारी याद से ही हम यह पद पाते हैं। क्या पद? नर से नारायण पद पाते। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, स्थापना करने वाला भी स्वयं स्थिति में रहने वाला है। क्या इस परिस्थितियों की दुनिया में भी आता है, पर शरीर में आता है, अपना शरीर नहीं है उसको, फिर भी सदैव स्वयं स्थिति में रहने वाला है। उस स्वयं स्थिति में रहने वाला ही स्वर्ग स्थापन कर सकता है। वो नर परिस्थितियों के दास हैं, वो नर थोड़े ही स्वर्ग स्थापन करेंगे। क्या स्थापन करेंगे? नर तो नर के ही स्थापन करेंगे। नर माने ही मनुष्य, मनुष्य का मन चलायमान होता है। जिसका मन चलायमान है, चंचल है, कंट्रोल में नहीं है, वो फैसला कैसा करेगा? अच्छा करेगा या रंग फैसला करेगा? फैसला ही रंग हो जाता है। अभी हम बाप से पढ़ाई पढ़ रहे हैं ये नारायण पद पाने के लिए। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार इनों की जो डायनेस्टी चली है वो बाप अभी स्थापन कर रहे हैं। अभी अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग पर, इस संगम युग पर पुरुष अर्थात आत्मा में उत्तम से उत्तम पद पाने वाली 108 16108 और 1,00,000 जो शालिग्राम पूजे जाते हैं रुद्रज्ञान यज्ञ में, और 9,00,000 सितारे जो आसमान में गाए जाते हैं, वो सब नंबर वार राजधानी यहां स्थापन हो रही है। तुम भाषण आदि में भी ऐसा करो, एक्यूरेट किसी की बुद्धि में घुस जाए। पहले पहले तो बाप की पहचान दो। पूछो तुम किसके बच्चे हो? तुम कौन हो? कोई कहेंगे हम मास्टर हैं, कोई डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लड़का हैं, लड़की हैं, औरत हैं, आदमी हैं। अरे पहले तुम डॉक्टर इंजीनियर थे क्या? बचपन में थे क्या? कहेंगे नहीं। तो तुम हो कौन? तुम बताना पड़े, तुम आत्मा हो। आत्मा हो तो आत्मा का रूप स्वरूप भी बताना पड़े। उसे बात करते हैं तो कहां देखते हैं? उसका पेट देखते हैं कि चेहरे में देखते हैं? चेहरे में देखा जाता है। इससे साबित होता है आत्मा कहां रहती है, इस शरीर में, चेहरे में, जिसे उत्तम अंग कहा जाता है। कैसा अंग? उत्तम ते उत्तम अंग। उस उत्तम अंग में आत्मा निवास करती है। आत्मा का रूप क्या है? भारत में तो बिंदी लगाते हैं, प्रभु की कीमत है, बिंदी किस बात की यादगार है? आत्मा की यादगार है। आत्मा बिंदी मिसल है, अति सूक्ष्म है। वो आत्मा बिंदी स्टार के मुआफिक है। वो आसमान में तो जड़ सितारे और ये हैं धरती के चैतन्य सितारे। इन आत्माओं का बाप भी तो कोई होगा, आत्माओं को आत्मा का परिचय देने वाला कोई तो होगा, वो है परमपिता परमात्मा, जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। जब आते हैं इस सृष्टि पर तो कोई के शरीर में प्रवेश करते हैं। इसलिए सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ में भी लिखा हुआ है प्रवेश तुम, क्या मैं प्रवेश करता हूं, प्रवेश करने योग्य हूं। जैसे भूत प्रेत प्रवेश कर जाते वैसे मैं भी प्रवेश करता हूं, परंतु भूत प्रेतों को तो अपना सूक्ष्म शरीर होता है, वो प्रवेश करते हैं तो जिसमें प्रवेश होता है वो बाहरी हो जाता है, अपने स्वरूप को ही भूल जाता है, इतना वजन पड़ता है। मैं तो बहुत हल्का फुल्का हूं, मेरे ऊपर कोई पाप पुण्य का बोझ नहीं है, पाप पुण्य मेरे को लग नहीं सकता, निरंजन निराकार हूं। मैं जिसमें प्रवेश करता हूं उसको पता भी नहीं लगता कब प्रवेश करता हूं, कब कब चला जाता हूं। बाद में पता पड़ता है कि ऐसा ज्ञान तो आज तक दुनिया में कोई ने सुनाया ही नहीं, ये तो परमात्म ज्ञान ही हो सकता है। तो पहले पहले उस बाप का परिचय देना चाहिए, जो निराकार बाप इस सृष्टि पर कोई साकार तन में आते हैं। किस साकार तन में आते होंगे? जरूर सब धर्मों में उसका गायन है, हिंदुओं में उसको आदिदेव कहते हैं, सृष्टि का आदि पुरुष शंकर, जैनियों में उसे आदिनाथ कहते हैं, ऋषभदेव, मुसलमानों में उसको आदम कहते हैं, बाबा आदम, और क्रिश्चियंस में एडम कहते हैं। वो ही सृष्टि का पहला मनुष्य है जिसमें परमपिता परमात्मा पहले पहले प्रवेश करते हैं, और जिसमें पहले पहले प्रवेश करते हैं वही मुकर्रर रहते हैं। तो पूरी बात की पहचान देनी पड़े, बताना पड़े कि वो हमारा बाप भी है, बेहद का बाप है, हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। हद का बाप एक जन्म का वर्षा देगा, ये तो बेहद का जन्म जन्मांतर का बाप है, ये जन्म जन्मांतर की सुख शांति का वर्षा देता है, और हर जन्म में नहीं देता है, क्या 84 के चक्र में एक ही बार आकर जन्म जन्मांतर का बेहद का वर्षा दे देता है। तो ऐसे बाप का कितना महत्व हो गया, ऐसे बाप की पहचान गहराई से लेनी चाहिए और देनी चाहिए, पूछना चाहिए तुम किसके बच्चे हो, बाप के बच्चे हो ना, तुम तो झट गएंगे हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं, और साकारी प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे और बच्चियां हैं। इस समय ईश्वरीय संपदा है और प्रजापिता ब्रह्मा भगवान सावली हम सब भाई बहन। अभी हम आसुरी संप्रदाय नहीं है, पहले थे आसुरी संप्रदाय, अभी है ईश्वरीय संप्रदाय। इनकी पहचान क्या है? ईश्वरीय संप्रदाय प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों की क्या पहचान है? इनकी पहचान भी है क्या? इनकी, हाँ इनकी पहचान है कि इनकी शादी मुरादी नहीं होती है। अगर कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलावे और उसकी शादी मुरादी हो जावे तो समझो कोई झूठा आकर के बैठा था अंदर। ये भी बाप समझाते हैं, क्योंकि कई ऐसे होते हैं जो गिर पड़ते हैं, काम अग्नि उनको जलाए देती है, डर रहता है। तुम बच्चों को भी डर रहना चाहिए, एक बार गिरे तो की कमाई चट हो जाती है। ऐसे नहीं कि ढोल मजीरा बजाए शादी कर ली, उसे ही शादी कहा जाता है। शादी माना क्या? विकार में गिरा माना शादी हो गई। शादी किसको कहा जाता है? दुनिया क्या समझती है? दुनिया समझती है ढोल मजीरे बजा लिए तो शादी हो गई, लेकिन वो असली बात है क्या? असली बात क्या है सो बाप बतलाते हैं। काम से हराया तो पद भ्रष्ट हो जाते। अभी कमाई तुम्हारी कितनी बड़ी है, एक जन्म की कमाई नहीं है, एक जन्म की पढ़ाई नहीं है, ये पूरे ही 84 चक्र की पढ़ाई है। मनुष्य तो करके पदम कमावेंगे, करोड़ कमावेंगे, अरब कमावेंगे, पेट में कितना खावेंगे, एक पाव आटा, वो कमाई करने का फायदा क्या हुआ है? बेवकूफ बुद्धू किसको कहा जाता है? आठ गांव का चौधरी, 20 गांव का राव, अपने काम ना आवई तो ऐसी तैसी में जाओ। उनको ये थोड़े ही पता है कि 8-9 वर्ष में ऐसा कुछ खलास होने वाला है। 8-9 वर्ष माने 76 में ये बुद्धि में आने लगेगा। क्या पहले एक की बुद्धि में आएगा या 500 करोड़ की बुद्धि में इकट्ठा आ जाएगा? एक की बुद्धि में पक्का पक्का बैठ जाता है कि अब ये दुनिया खलास हुई पड़ी है। बॉम्ब्स बनाने वाले जानते हैं कि ये दुनिया जरूर खत्म होनी है, परंतु कोई हमको प्रेरणा देता है, बनाने की भी प्रेरणा देता है, परंतु अभी उनमें इतना दम नहीं है कि अपने ही बनाई हुई रचना का विस्फोट कर सके। कमजोर आत्माएं हैं, फिर किसको आना होता है? भक्ति मार्ग में कहते भी हैं हर हर बम बम, सब पापों का हरण करने वाला जब बमों का विस्फोट कराता है प्रवेश करके इन बड़े बड़े वैज्ञानिकों में, तो सारी दुनिया खलास हो जाती है। वो समझते हम तो बम बनाते रहते हो, इतने साल से बनाते आए, खलास क्यों नहीं कर देते? इतनी दम ही नहीं है। अच्छा मीठे मीठे बच्चों को दूध मार दी, वो इंसान 5 जून 1968 ये है सच्चा सच्चा ईश्वरीय परिवार है। सच्चा सच्चा कैसे? वहां परिवार होते हैं, कैसे बनते हैं परिवार? है माँ बाप होते हैं, बच्चा आकर जन्म लेता है, ऐसे ही तो परिवार बनते हैं। यहाँ भी क्या है? यहाँ भी ईश्वरीय परिवार है, प्रजापिता और ब्रह्मा, ब्रह्मा ब्रह्मा ने बड़ी माँ माने माँ, बड़ी माँ भी है और सारी मनुष्य सृष्टि जो प्रजा है ईश्वर की, उसका पिता भी है। परंतु ऐसे कहने मात्र से नहीं हो जाता है। यहाँ तो सब कुछ प्रैक्टिकल है। बाप का बच्चा बाप के घर में जाकर जन्म न ले तो बाप का बच्चा कहा जाएगा? वो आत्मा शरीर छोड़ती है, शरीर छोड़ने के बाद वो अगर बाप के घर में जन्म न ले, भूत प्रेत बनकर इधर उधर मंडराती रहे और कहे हम बाप के बच्चे हैं, तो बाप का बच्चा कहा जाएगा? नहीं। बाप कहते हैं एक जगह से अनिश्चय बुद्धि होकर के फिर बाप के घर में आकर जो निश्चय बुद्धि बनते हैं, क्या 9 दिन भट्टी में पकते हैं, वहां क्या होता है उस दुनिया में 9 महीने पेट में गुप्त रीति पकते हैं, और यहां बेहद की बात है 9 दिन भट्टी में पकते हैं, 1 दिन आना 1 दिन जाना और 7 दिन की भट्टी। उस भट्टी में पकने के बाद निश्चय बुद्धि विजयंती बच्चे बनकर के निकलते, जैसे कि बच्चे का जन्म हो गया। तो बाप के घर मधुबन में तो पहुंचना पड़े, जब तक बाप के बच्चे नहीं बने हैं तब तक ईश्वरीय परिवार के नहीं कहे जा सकते। अभी बनेंगे ईश्वरीय परिवार, फिर होगा दैवी परिवार। क्या इसी जन्म में दैवी परिवार की स्थापना होनी है? यह सारी दुनिया खलास हो जाएगी तब दैवी परिवार बनेगा। फाउंडेशन कहां पड़ना है? इसी दुनिया में फाउंडेशन पड़ना है। आप बताओ कि ईश्वरीय परिवार बड़ा या दैवी परिवार बड़ा है? ईश्वरीय परिवार बड़ा है। बड़ा किसे आर में?
ईश्वर।
बड़ा परिवार इस हाल में है कि ईश्वर को तो सारी दुनिया मानती है। जो आज के नास्तिक हैं, जब एटम बम फटाफट फटने लगेंगे तो उनकी भी बुद्धि चक्रित हो जाएगी, अरे हम गए कि गए, उनके मुख से भी निकलेगा वो गॉड फादर। तो गॉड के तो सब ही बच्चे हैं, हाँ नंबर वार पहचानने वाले हैं। कोई ऐसे भी पहचानने वाले हैं जो 84 जन्म बाप से बरसा लेते हैं? एक जन्म की तो बात ही छोड़ो। कोई ऐसे नास्तिक है कि अपनी आत्मा को भी स्वीकार नहीं कर पाते कि हम ज्योतिबिंदु आत्मा है, स्टार है जिसकी रोशनी आंखों से निकल रही है। आंखों से किसकी रोशनी निकल रही है? आत्मा की रोशनी निकल रही है। आत्मा निकल जाती है, आत्मा बाहर हो गई और आंखें पटन जैसी हो जाती। तो अभी तुम्हारा है ईश्वरीय परिवार। ईश्वरीय परिवार में नंबर वार है या ऐसे भी हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे, कोई इस्लाम धर्म में चला जाएगा, कोई क्रिश्चियन धर्म में चला जाएगा, कोई मुस्लिम बन जाएगा, ये हिस्ट्री है। हिंदू ही दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। कोई दूसरे धर्म का कन्वर्ट हुआ है क्या? नहीं। ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि देवी देवता सनातन धर्म ही सबसे पहला धर्म है जो बाप आकर के स्थापन करते हैं, फिर देवी देवताओं से ही पलट करके दूसरे धर्म में जाते हैं। तो सारा मदार पोजीशन पर है। यहां तुम्हारा रॉयल पोजीशन है, बाकी तुम्हारे पास जो आते हैं वो देखो कैसे कैसे आते हैं, तो तुम उनकी हालत देखते हो। आज निश्चय बुद्धि और कल अनिश्चय बुद्धि मरंती हो जाते हैं। ये कोई समझते नहीं है कि हम वैश्यालय के निवासी हैं। इस दुनिया में किसका राज्य है? वैश्याओं और लंपटों का राज्य है, रावण का राज्य है। ईश्वरीय राज्य अभी नहीं कहेंगे, राम का राज्य नहीं है। अभी हम सब विशेष हैं। समझाने के लिए बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि समझने समझाने से ही बुद्धि ट्रांसफर होगी। मनुष्य से देवता बनाना है, मनुष्यों का कितना करैक्टर से सुधरता है। यहाँ देवताएं और कहाँ मनुष्य और कहाँ राक्षस, रात दिन का फर्क पड़ जाता है करैक्टर से। अभी तक भी बहुत बच्चे हैं जो अपने चलन सुधारे हैं तो अच्छा पद पा सकते हैं। आसुरी चलन से दैवी चलन में लाना ये बाप का ही काम है, और तो कोई दैवी चलन सिखला भी नहीं सकता। तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि बाबा आया हुआ है, आया हुआ है, सूत्र से बदली करके ब्राह्मण बनाते हैं। फिर ब्राह्मण चेंज होंगे तो देवता बनेंगे। ये है हंसों का संगम युग। अब हंस ऐसे कोई पक्षी नहीं होते हैं, ये ज्ञान रत्नों की वैल्यू है। ज्ञान रत्न चुगने वाले हंस हैं। बच्चों का वातावरण, बच्चों की चलन बड़ी अच्छी होनी चाहिए। रोज रात को देखना चाहिए, हमारे में आसुरी चलन होगी तो हम नापास हो जाने, हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। हरेक को अपने चाल को देखना है, अपने ऊपर अपने आप ही कृपा करनी है, श्री मत पर चलना है। श्री मत है एक श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप की और सबकी भ्रष्ट मत है। एक बाप ही सच्चा रास्ता बताते हैं। ऐसे बाप को जितना याद करेंगे उतना यह खाद निकलती जाएगी। तुम नब्ज तो सभी की देखते हो, कौन कौन हमारे धर्म का है तुम ढूंढते हो अपने देवी देवता सनातन धर्म की सैंपलिंग लगाने के लिए। जो जंगली मनुष्य होते हैं वो तो जंगलों की ही सैंपलिंग लगाते रहते हैं, कांटों की सैंपलिंग लगाते हैं। उनको ये पता ही नहीं कि दैवी फूलों का बगीचा बन रहा है। दैवी फूलों के बगीचे की कितनी बड़ी आयु होती है। तुम सतयुग के मालिक बनने वाले हो, यही खुशी बच्चों को होनी चाहिए कि बाबा आया हुआ है फिर से हमको वर्षा देने के लिए। तो ऐसे बाबा से वर्षा लेना चाहिए ना। अच्छा, ओ
एक हो बिल्कुल अफ्रीकन और दूसरा हो अरबियन, लंबा चौड़ा मट्टा कट्टा कट्टा मोटा ताजा, और दोनों की शादी हो जाए तो चलेगा है? ये तो जोड़ी ही नहीं बनी। संपूर्ण बंधन समान बंधन तभी ही हो सकता है जब समानता हो। तभी ये अनुभूति होती है। हाँ जी, मुरली का पॉइंट तो अभी भी बोल रहा है कि योग शब्द नहीं बोलना चाहिए, याद बोलना चाहिए। और क्या बोला ये आगे वालों ने नहीं सुन पाया, जोर से बोलो। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, यज्ञ का उच्छेदन कर दिया रुद्रगणों ने, तब उनका मुख काट दिया गया, फिर बकरे का मुख लगाया गया। क्या? जो बकरे का मुख लगाया गया ये किस बात की यादगार? प्रजापिता वाली आत्मा कौन है? कौन सी आत्मा है? राम वाली आत्मा प्रजापिता है। उसका टाइटल ब्रह्मा भी है या नहीं है? ब्रह्मा कितने हैं? पांच। उनमें से एक का मुख काट दिया गया। मुख काटना माने देवान अलग कर दिया और आत्मा अलग हो गई। तो अच्छा काम हुआ या बुरा काम हुआ? अच्छा काम हो गया। 76 से आत्मा अलग और देवान अलग। लेकिन वही राम वाली आत्मा जब तमो प्रधान बनती है अंत में, सृष्टि के अंत में, तो राम सो क्या बन जाता है? रावण बन जाता है। वो ही प्रजापिता ब्रह्मा, ब्रह्मा के रूप में ऐसा रूप धारण करता है जो बहुत ही तमो प्रधान हो जाता है। वो अपने को ही भगवान सांप साबित करता है, मैं हूं मैं हूं। तो बकरे का मुख दिखाया गया, बकरा क्या करता है? मैं भगवान कोई चीज नहीं। तो अंत में बकरे का मुख दिखाया गया। प्रभुता पाहि काहि मद नाही, ऐसे होता है जब कोई को प्रभुता मिल जाती है, कुर्सी मिल जाती है, तो अहंकार चरम सीमा पर पहुंच जाता है। वो चाहे कोई भी मनुष्य आत्मा हो, सबका यही हाल होता है।
2008 में तो शत्रुराम बन गया, कब तो नहीं होगा? इससे पहले होगा ना?
दुनिया का विनाश कब होगा? हाँ, तो कीड़े मकोड़ों जैसी आत्माओं का भी विनाश होगा या नहीं होगा? तो कौन होगा विनाश कराने वाला? सबके अहंकार को नीचे गिराने वाला कोई तो एक चाहिए। दुनिया में तो बड़े बड़े अहंकारी है, 500-700 करोड़ बड़े बड़े अहंकारी है, उनका कोई तो बाप होगा। दुनिया की कोई ऐसी बात ही नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। तो बड़े बड़े अहंकारियों का भी कोई बाप है या नहीं है? उसको फिर ये भी अहंकार आ जाता है, मैं ही भगवान हूं। तो बकरे का मुख दिखाई दिया गया। और हाथ उठाओ। हाँ,
शंकर के मस्तक में सांप की
दिखाई, जो पांच सांप दिखाए गए हैं वो पांच विकारों की यादगार है। कमर में काम विकार की यादगार, दोनों भुजाओं में क्रोध और लोभ की यादगार, गले में मोह की यादगार और सर के ऊपर अहंकार की यादगार। माना ये पांचों सर्प उस शरीरधारी में है, अलग नहीं है। और पचासी जन्म 84 जन्म हुए हैं। हाँ एक्स्ट्रा आर्डिनरी किस लिए कहा गया, किस लिए एक्स्ट्रा आर्डिनरी कहा गया? एक्स्ट्रा आर्डिनरी इसलिए कहा गया कि वो 21 जन्मों में से पहला जन्म भी है और 84वां जन्म भी है, इसलिए एक्स्ट्रा आर्डिनरी जन्म। जो प्रजापिता के लिए वो प्रजा माता के लिए भी 85वां जन्म क्यों? 84 जन्म होंगे तो 84 लौकिक बाप होंगे या 85 लौकिक बाप होंगे? 84 बाप होंगे, 85 कहें तो 85 बाप चाहिए, वो तो किसी को होते ही नहीं। श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, दोनों टाइम में याद आती रहे। श्वास लेते भी बिंदी और श्वास छोड़ते भी बिंदी याद आवे तो कहेंगे श्वास और श्वास याद, और बिंदी याद आएगी तो बिंदी कहाँ बैठी हुई है वो भी याद आवेगा। बाप अपने बच्चे को याद करता है तो बच्चा या तो घर में याद आता है, अगर बिलायत में बैठा होगा तो बिलायत भी याद आवेगा कि सिर्फ बच्चा ही याद आवेगा? बच्चा भी याद आएगा, स्थान भी याद आएगा। व्यक्ति का कनेक्शन स्थान से भी होता है, तो ऐसे ही श्वास लेते लेते आत्मा भी याद आए, आत्मा का आधार भी याद आए, श्वास छोड़ते भी आत्मा याद आए, आत्मा का आधार भी याद आए। ईश्वरीय सेवा में कोई आत्माएं अनुभव करती है मोहब्बत का और कोई आत्माएं अनुभव करती है मेहनत का है। ईश्वरीय सेवा में जो मोहब्बत मोहब्बत में रह करके सेवा करते हैं उनको सफलता ज्यादा मिलती है, या जो बहुत मेहनत करके खींच खांच के सेवा करती है उनको सफलता ज्यादा मिलती है? तो राम वाली आत्मा ज्ञानी तू आत्मा है या ज्ञानी आत्मा है? ज्ञानी तू आत्मा तो मोहब्बत में ही करेगी। जितना ज्ञान पहचान, ज्ञान माने जानकारी, किसकी जानकारी? शिव बाप की जानकारी। जितनी गहराई से बुद्धि में बैठी हुई होगी वो उतना ही मोहब्बत में रह करके सेवा करेगा, इसलिए मेहनत अनुभव नहीं होती है। और दूसरी आत्माएं इस बात में नंबरवार हैं मोहब्बत में रहने में अथवा ज्ञान और पहचान में रहने में नंबरवार हैं। तो कोई बहुत मेहनत का अनुभव करके सेवा करेंगी, उनमें सबसे लास्ट वाली आत्माएं वो होंगी सदगुरु निंदक और न पावे। लास्ट में उनको विदेशियों में जाकर के, विदेशियों के बीच में रह करके सेवा करनी पड़ेगी। तो मोहब्बत में होंगी या मेहनत में होंगी? मेहनत में होंगी, इसलिए प्राप्ति कम होगी। और बाबा मेहनत नहीं चाहते हैं, हैं?
बाबा को मेहनत नहीं पसंद है।
मेहनत किसको पसंद होती है? किसी को पसंद होती है?
हमको भी नहीं।
मेहनत तो किसी को पसंद नहीं होती है। फिर मोहब्बत, फिर मोहब्बत पसंद तो तब होगी जब ज्ञान होगा, पहचान होगी, तभी तो मोहब्बत होगी। अगर पहचान है 50% और 50% अनिश्चय पैदा होता रहता है, तो मोहब्बत होगी या मेहनत होगी? इसके लिए कोई क्या करेगा? और है गायत्री को तीन मुख दिखाए जाते हैं। गायत्री का अर्थ क्या है? त्री माने क्या? तीन। और गायन माना क्या? महिमा। वो तीन कौन है देवियां जिनका गायन है? और तीनों इकट्ठी भी होती है, इकट्ठी होती है कि नहीं कभी? तो जब इकट्ठी होती है तब उनका नाम पड़ जाता है गायत्री। गंगा, यमुना और सरस्वती, ये तीन मुख है, ये तीन देवियां बहुत प्रसिद्ध है। हाँ जी, वो है ही जगदम्बा, बुद्धिमान। ज्यादा बुद्धि का काम जगदम्बा के बच्चों में होता है या भारत माता के बच्चे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं? है? बाप को कौन पहचानते हैं? विदेशी बाप को पहचानते हैं बुद्धिमान होने के आधार पर, या स्वदेशी पहचानते हैं? विदेशी पहले पहचान लेते हैं, क्योंकि तो जगदम्बा के बच्चे हैं। जगदम्बा है सब धर्मों की अम्बा, और भारत माता सब धर्मों की माता नहीं है। जो भारत के खास धर्म है चंद्रवंश सूर्यवंश, उन्हीं की माता है। वो देवताएं हैं, देवताएं बुद्धू होते हैं या बुद्धिमान होते हैं? अगर बुद्धिमान हो तो विदेशियों के संग के रंग में आ क्यों आ जाएं? बच के न रहे? भोले वाले इतने होते हैं कि जितने ही विदेशियों ने आक्रमण किए भारतवर्ष में, सबको आत्मसात कर लिया। ऐसा विदेशियों ने कभी किया है क्या? विदेशियों ने कभी नहीं किया। अभी भी ब्रह्मा कुमारियों में इतनी दम नहीं है कि अगर कोई एडवांस पार्टी में कन्वर्ट हो जाए और कन्वर्ट होने के बाद वहां से अनिश्चय बुद्धि होकर के वापस आए तो उसको अपने अंदर समा के रख सकें। है ताकत? नहीं है। समाने की ताकत है ही नहीं जो भारतवासियों में ताकत है। इसलिए भारत को मात पिता का देश कहा जाता है। कोई को कहीं शरण मिले या न मिले, लेकिन भारत में शरण जरूर मिलती है। शरणार्थी सबसे ज्यादा कौन से देश में है? भारतवर्ष में। एक होता है युद्ध में युद्ध करते करते अचानक शरीर छोड़ देना, और एक होता है युद्ध नहीं किया जा रहा है, युद्ध की स्टेज में नहीं है, अपनी मौत अचानक शरीर छोड़ दिया, कोई विकर्म उदित हो गया, तो भूत प्रेत कब बनना पड़ेगा? जो युद्ध करते करते देश की रक्षा के लिए शरीर छोड़ते हैं, जन कल्याण के लिए शरीर छोड़ते हैं, उनको सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है, या स्वार्थ के लिए शरीर छोड़ते हैं उनको सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है? है? स्वार्थ वालों को सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है। युद्ध भूमि में कितने अचानक मौत होती है, उनके लिए कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, वो भूत प्रेत नहीं बनते हैं। क्यों? जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण आते हैं। भाव प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। भावना प्रधान होती है मरते समय, कोई स्वार्थ के लिए शरीर छोड़ते हैं और कोई परमार्थ के लिए शरीर छोड़ते हैं। जो परमार्थ के लिए शरीर छोड़ते हैं उनको सूक्ष्म शरीर के बंधन में नहीं आना पड़ता है। ऐसे ही प्रजापिता, सारी सृष्टि का पिता है, हीरो पाठधारी है, तो भावना हीरो पाठधारी की होगी या नष्ट भावना होगी? इसलिए उसको सूक्ष्म शरीर धारण नहीं करना पड़ता है। उठाओ। हाँ जी, आवाज यहाँ तक पहुँचाओ। ये आगे वालों ने नहीं सुन पाया है? लक्ष्मीकांत, लक्ष्मी की शोभा वाला, कांति माने शोभा, और लक्ष्मीधर माने लक्ष्मी को धारण करने वाला। क्या दोनों एक ही हुए या अलग अलग हुए? हैं? एक ही हो गए। और हैं? साठ वर्ष है? 76 से 36 तक क्या है? सूक्ष्म स्टेज है। सूक्ष्म स्टेज माने सूक्ष्म शरीर। हाँ,
स्टेज में काम कर रहा है,
अव्यक्त स्टेज में काम कर रहा है, सूक्ष्म स्टेज नहीं। अव्यक्त माने बुद्धि इस साकार दुनिया में नहीं लगी रहती है। बुद्धि कहाँ लगी रहती है? या तो ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में रहती है, या तो ईश्वरी सेवा की प्लानिंग में रहती है, या तो नई दुनिया में बुद्धि लगी रहती है, या तो परमधाम की याद में बुद्धि रहती है। उसमें प्रवेश होकर पाठ बजाती है। जब प्रवेश है तो आकारी और निराकारी है, प्रवेश नहीं है तो गुलजार दादी में प्रवेश करके पाठ बजाती है। ऐसे ही 36 तक क्यों चलेगा? बाप और बच्चे दोनों साथ साथ संपन्न बनेंगे या आगे पीछे संपन्न बनेंगे? साथ साथ तो 2018 है। और
ऊपर से आश्रम से आती है गंगा से समुद्र में जाएगा?
गंगा से कहाँ आती है?
गंगा से मिलती है।
गंगा ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्रा में अपने को समा देती है। गंगा में ज्यादा जल होता है या ब्रह्मपुत्रा में ज्यादा जल होता है? ब्रह्मपुत्रा में ज्यादा जल होता है और गंगा में जल थोड़ा होता है। हाँ जी, किसको? माताएं जो हैं दो हैं, एक भारत माता और एक जगत माता। तो ये कैसे कह सकते हैं कि भारत माता को माता नहीं कहेंगे? पहली अव्यक्तवाणी में ही बोल दिया भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। तो शिव की शक्ति सबकी माता नहीं हुई? तो ये कहां से निकाल लिया कि माता नहीं कहेंगे? हैं? क्या कैसे हुई? कि जगत की मां नहीं कहेंगे? भारतवासियों की तो माता है। जगदम्बा जगत की माता है।
किसी को लात लग गया
है?
किसी को मैंने गोल लग गया,
लात लग गई,
लेबर लग गया।
हाँ,
कोई ये ऐसा कर लेता है तो बच्ची हो गया?
बिल्कुल हो गया।
उसको ऐसा नहीं करेगा तो गुस्सा होगा।
गुस्सा होगा तो उसको खुश करने के लिए कह देने से क्या होता है? अगर कोई भक्ति मार्ग में चल रहा है और भक्ति मार्ग वाले को मना किया जाए तुम भक्ति मत करो, तो ये ज्ञान है या अज्ञान है? क्या है? अज्ञान है। किसी को भक्ति की भावना को ठोकर क्यों मारना? उसकी भक्ति की भावना पूरी होने दो। ओम शांति।